नमस्कार भारत, आज है 21 अक्टूबर दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। अफगानिस्तान में दो मस्जिदों पर आत्मघाती हमले में कम से कम 60 की मौत। बिहार में गौशाला में घुसने पर एक अति पिछड़े को पंचायत की अमानवीय सजा, जबरदस्ती थूक चटवाया।
खैनी मांगने गए थे सर, मुखिया जी थे धर्मेंद्र गोखाउस जगह, और बोला के थूक चटवाए और औरत से पांच चप्पल मार खिलवाए।
और विवेचना में आज सुनिएगा 1962 के चीन युद्ध में भारत की हार के लिए जानकार किसे मानते हैं दोषी।
पंडित नेहरू द बिगेस्ट वन टू ब्लेम। उनका आइडियल था हिंदी चीनी भाई भाई, उनका एडवाइजर था कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर, और हमें हुक्म था चाइनीज वोट अटैक जाओ।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान हुए दो आत्मघाती हमलों में कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। पहला हमला राजधानी काबुल की एक शिया मस्जिद में हुआ, जिसमें 40 लोग मारे गए, जबकि दूसरा हमला मध्य प्रांत गोर की एक सुन्नी मस्जिद में हुआ, जिसमें 20 लोग मारे गए। अधिकारियों का कहना है कि हताहतों की संख्या भी और बढ़ सकती है। इराकी फौजों और कुर्द सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरों के बीच अमरीका ने इराकी फौजों से संयम बरतने को कहा है। अमरीका ने इन झड़पों से बचने के लिए इराकी फौजों को देश के उत्तरी इलाके में सैनिकों की तैनाती कम करने की अपील की है। तेल के धनी किरकुक प्रांत को अपने कब्जे में लेने के लिए शुक्रवार को इराक की संघीय फौजों को कुर्दिश पेशमर्गा फौजों के बीच 3 घंटे तक झड़प हुई थी। स्वायत्त कुर्द इलाके में आज़ादी के लिए जनमत संग्रह किया जा रहा है, जिसके बाद इराक ने सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। जनमत संग्रह अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य है कुर्दों की जिंदगी में सुधार लाना। अंतिम क्षणों में अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें बगदाद के साथ बातचीत के लिए 2 साल का मौका दिया गया, और अगर इन 2 सालों में हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे तो अमरीका जनमत संग्रह का समर्थन करता, लेकिन बड़ी गलतियों की वजह से इस मौके का हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये थे एक प्रमुख कुर्द नेता बाफेल तालाबानी के शब्द। मिस्र के अधिकारियों ने कहा है कि देश के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में इस्लामी चरमपंथियों से हुई मुठभेड़ में सरकारी सुरक्षा बल के 53 जवान और 15 चरमपंथी मारे गए हैं। गृहमंत्री ने कहा है कि रेगिस्तान में सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी चरमपंथियों ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने बताया कि कमजोर सिग्नल की वजह से जमीनी और हवाई मदद नहीं पहुंचाई जा सकी, जबकि चरमपंथी इलाके से भलीभांति परिचित थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चरमपंथी हस्म ग्रुप के सदस्य थे, जो अतीत में भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाता रहा है। पोलैंड से आ रही खबरों के अनुसार एक व्यक्ति ने देश के दक्षिणी शहर इस्तालोवा वोला के एक भीड़भाड़ वाले शॉपिंग सेंटर के पास चाकू से हमला किया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं, इनमें कई की हालत काफी गंभीर है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की बैठक से लौट रहे पोलैंड के प्रधानमंत्री की अगवानी करने पहुंचे एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यहां पहुंचने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। चाकू से हमले में कई लोग घायल हुए हैं, ये बहुत बुरी खबर है। प्रधानमंत्री ने तत्काल इस्तालोवा वोला के मेयर से बात की है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री से भी बात की है, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तत्परता से कार्रवाई की। ये थे सरकारी प्रवक्ता रफाल बोशनेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि चिली के वामपंथी कवि पाब्लो नेरुदा की मौत जहर देने से हुई थी। इससे पहले माना जा रहा था कि उनकी मौत प्रोस्टेट कैंसर से हुई थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ अब उनके शव में मिले जहर के बारे में जांच करेंगे। नोबल पुरस्कार विजेता पाब्लो नेरुदा की मृत्यु 1973 में हुई, और उस समय हुई जब तख्ता पलट के 2 हफ्तों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से उनकी मृत्यु के कारणों पर विवाद होता रहा है। वैम्पायर के संदेह में एक व्यक्ति पर भीड़ के हमले के संबंध में मलावी पुलिस ने 140 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
आप आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। श्रोताओं अक्सर भारत चीन युद्ध की बात होती है जिसमें भारत को हार मिली थी, इस हार की जानकार क्या वजहें मानते हैं इस पर आज आपको विवेचना सुनवाएंगे। कश्मीर में चोटी काटे जाने की घटनाएं अब कैसे राजनीतिक मोड़ ले रही हैं ये बताएंगे, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अफगानिस्तान में दो मस्जिदों पर हुए आत्मघाती हमलों में कम 60 लोगों की मौत हो गई है। एक हमला काबुल में हुआ और दूसरा गोर प्रांत में हुआ। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए संदीप राय से।
अफगानिस्तान में दो मस्जिदों पर हुए आत्मघाती हमलों में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। पहला हमला राजधानी काबुल में एक शिया मस्जिद इमाम जमान में हुआ, जहां जुम्मे की नमाज के दौरान हमलावर घुस गए और खुद को उड़ा लिया। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट करने से पहले हथियारबंद हमलावरों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस घटना में 40 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। शुक्रवार को मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। एक चश्मदीद ने बीबीसी को बताया कि इमाम जमान मस्जिद युद्ध मैदान की तरह दिख रही है।
10 नफर बुदन छह जख्मी छह जनाजा के जख्मियों यानी गर्दनिश जिसमें गिरफ्तार मगर
करीब 60 लोग या तो मारे गए या घायल हुए हैं। हमने वहां लोगों के धड़कन चेक किए, जिनकी धड़कन चल रही थी उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मैं शुरुआत से ही वहां मौजूद था, हमें अभी भी शव मिल रहे हैं। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। दूसरा हमला देश के मध्य प्रांत गोर की एक सुन्नी मस्जिद में हुआ। एक आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद में घुसकर खुद को उड़ा लिया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय खबरों के अनुसार इस हमले में एक सरकार समर्थित संगठन का कमांडर भी मारा गया। जिस समय हमला हुआ महमूद शाह हुसैनी मस्जिद में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया,
मर्दुम दहाई ने इबादत बता दुश्मन दाखिल मस्जिद में शाह
लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसी वक्त हमलावर मस्जिद में आए और खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया। हमें अभी भी नहीं पता कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं। ये थे महमूद शाह हुसैनी के शब्द। इससे पहले काबुल में आत्मघाती ट्रक बॉम्बर को गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से एक बड़े हमले को टालने में मदद मिली। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी किसी चरमपंथी समूह ने नहीं ली है, लेकिन कथित इस्लामिक स्टेट पूरे अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों पर हमला कर रहा है। अगस्त महीने में भी एक मस्जिद पर हमला हुआ था, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पूरे देश में इस हफ्ते हुए बम धमाकों में अब तक कुल 176 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें सुरक्षा बलों पर हुए चरमपंथी हमले भी शामिल हैं। इस साल तालिबान के हाथों अफगानिस्तान सेना और पुलिस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है।
ब्यौरा सुना रहे थे संदीप राय। और अब बात भारत के कश्मीर की, जहां चोटी काटे जाने के कई मामले सामने आए हैं और कल वहां एक शख्स को चोटी काटने के आरोप में पीटा गया और उसको कथित तौर पर जलाने की कोशिश भी की गई। मामला राजनीतिक मोड़ भी ले रहा है, क्योंकि अलगाववादियों ने सेना और सरकार पर इसके आरोप लगाए हैं और इसी सिलसिले में आज बंद भी बुलाया है। ज़्यादा जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले नवीन नेगी ने श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से बात की।
जो चोटियां काटने के जो घटनाएं हो रही हैं कश्मीर में पिछले डेढ़ पौने दो महीने से, तो उसको लेकर के आज दूसरी बार अलगाववादियों ने बंद बुलाया है, पूरा कश्मीर बंद। और साथ ही अलगाववादियों ने लोगों से कहा है कि वो सिविल कर्फ्यू के तौर पर इसको आज ऑब्जर्व करे पूरे कश्मीर, क्योंकि आज तक पुलिस जो है इस मामले में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है और न ही कोई क्लू मिला है अभी तक पुलिस को। और पुलिस का यही कहना है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ साइंटिफिक स्टेप्स उठाने जा रहे हैं, तो लेकिन अभी तक किसी भी केस को पुलिस इस मामले में तकरीबन 115-120 केस ऐसी घटनाएं सामने आई हैं पिछले डेढ़ महीने में।
जैसे आपने बताया कि पिछले डेढ़ महीने से चोटी कटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहां पे जो राजनीतिक दल हैं उनका क्या रुख है इस मामले को लेके?
देखिए, यहाँ पे जो दूसरी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है अलगाववादियों को छोड़ करके, अलगाववादियों ने तो कई प्रदर्शन भी किया और अलगाववादी ने तो साफ साफ यहाँ तक कह दिया कि ये जो चोटी काटने की जो घटनाएं पेश आ रही हैं ये भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सिक्योरिटी एजेंसियां हैं ये वही करवा रही हैं। और जहां तक जो मेन स्ट्रीम जो भारत समर्थक राजनीतिक दल है यहां पे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, تو نیشنل کانفرنس نے تو کئی بار آج تک جو ہے ان چوٹیوں کے خلاف ریلیز نکالی اور سرکار سے استعفیٰ مانگا کہ سرکار استعفیٰ دے دے, اور اسی طرح کانگریس نے اور دوسری جو ہے چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں تو انہوں نے بھی سرکار کے خلاف کافی جو ہے سرکار کے خلاف غصے کا اظہار کیا ہے پچھلے ان ڈیڑھ دو مہینوں میں, اور کئی بار سڑکوں پر یہ راجنیتک دل بھی آ گئے ہیں. تو لیکن ابھی تک جو ہے لوگوں میں یہی ایک کافی جو اینگر اس بات کو لے کر ہے کہ آخر پولیس کسی کو پکڑ کیوں نہیں پا رہی ہے. اور اس دوران جو سب سے بڑی جو ہے چنتا کی باتیں سامنے آ گئی ان ڈیڑھ دو مہینوں میں, کئی بار ایسے لوگوں کو پکڑا گیا, پیٹا گیا بہت ہی بے دردی کے ساتھ. جیسے کل سوپور میں بھی ایسا ہی کل ایک واقعہ ہوا, اور وہاں بریڈ چاپنگ کے شک میں ایک ویکتی کو پکڑا گیا اور لوگوں نے بہت ہی بے رحم طریقے سے اس ویکتی کو وہاں پہ مارا, جو کہ پولیس نے پھر بعد میں کہا کہ یہ مینٹلی چیلنجڈ بندہ تھا. تو اب الگا وادیوں نے کل جو ہے ان کا ایک پریس ریلیز آیا ہے انہی چیزوں کو لے کر کہ جب بھی آپ کو کوئی لگے کہ چوٹی کاٹنے آپ کو شک ہو کہ یہ چوٹی کاٹنے والا ویکتی ہے تو اس کو آپ مارے پیٹے نہ اس کو, بلکہ اس کو جو محلے کی جو اوقاف کمیٹیاں ہیں تو ان کے حوالے کرے ایسے ویکتیوں کو.
یہ تھے شری نگر میں ہمارے سہیوگی ماجد جہانگیر. اب بات بہار کی. بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار کے گرہ ضلع نالندہ میں ایک امانویہ گھٹنا سامنے آئی ہے. یہاں ایک شخص کو کتھت طور پر پنچایت نے اس لیے تھوک چٹوایا کیونکہ وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے ایک گاؤں والے کی گوشالہ میں چلے گئے تھے. اسے جاتی بھید بھاؤ کا معاملہ مانا جا رہا ہے. ابھیمنیو کمار ساہا کی یہ رپورٹ سنیے.
نالندہ ضلع کے اجے پور پنچایت کے اجنورا گاؤں سے ایک امانویہ گھٹنا کا معاملہ سامنے آیا ہے. یہاں اتی پچھڑی جاتی سے سمبندھ رکھنے والے مہیش ٹھاکر پر آروپ ہے کہ وہ گاؤں کے سریندر یادو کی گوشالہ میں بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر گئے تھے, جس کے بعد مہیش ٹھاکر کے ساتھ کتھت طور پر مار پیٹ کی گئی. مہیش ٹھاکر گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں,
جس سوت کرنے جا رہے تھے تو کھینی نہیں تھا میرا چنوٹی میں, اس لیے ہم سو ایک ایسے بغل میں سریندر پرساد رہتے ہیں, انہیں سے کھلی مانگ لیں. کھینی مانگنے گئے تھے سر, تو وہاں پر سریندر پرساد نہیں تھا, اس کا وائف تھی, تو بولے نہیں ہے. ہم اتنا کہا کہ ہم چل آئے, پھر ہم ساؤتھ کرنے چل گئے, ساؤتھ سے ہم چل گئے گھرے. مکھیا جی تھے دھرمندر گوکھا اس جگہ, اور کہ بولا کے تھوک چٹوائے اور عورت سے پانچ چپل مار کھلوائے.
ڈی ایم تیاگ راجن ایس ایم نے بتایا کہ گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی جانچ کے آدیش دیے گئے تھے, اور شکروار صبح تک سامنے آئے تتھیوں کے آدھار پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے.
کل جیسے ہی گھٹنا کی جانکاری پراپت ہوئی, ہم لوگ جانچ کروائے تھے, جانچ میں کچھ تتھیاں سامنے آئی تھی اور ان کے قتل انوسار پراتھمکی درج کی گئی ہے وبھن اداروں کے ادھین. سبھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس پرکار کا چھوٹی سوچ جہاں پر بھی جو بھی لوگ رکھتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے سبھی لوگ آگے آ کر کے سب مل کر کے اس کو دور کیا.
اس گھٹنا میں 8 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ایس پی سدھیر کمار پوریکا نے بی بی سی کو بتایا کہ گھٹنا کے بعد دھرمیندر یادو نام کے ویکتی کے گھر پر پنچایت بلائی گئی تھی, جس میں استھانیہ مکھیا دیانند مانجھی بھی تھے. سبھی نے مل کر انہیں یہ سزا دی تھی.
کچھ گرامین لوگ دھرمیندر یادو کے گھر میں جو ہے یہ لوگ اکٹھا ہوا, گرامین لوگ کچھ لوگ, اس میں مکھیا بھی تھا, تو یہ لوگ آپس میں جو ہے وہ لوگ ڈیسیزن لیا کہ یہ غلطی کیا ہے اور اس کو جو ہے سزا ملنا چاہیے. تو اسی میں جو ہے یہ لوگ ڈیسیزن لیا کہ وہاں دو تین مہیلا تھی, وہ مہیلا کے ساتھ جو ہے اس کو یہ ہوا اور فزیکلی ابیوز کیا گیا, اور دوسرا جو ہے اس کا جو ہے تھوک جو ہے اسی کو چٹوایا.
گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے, جس میں مہیش ٹھاکر کو کچھ لوگ غلطی ماننے کی بات کہہ کر زمین پر تھوک کر اسے پانچ بار چاٹنے کو کہہ رہے ہیں. مہیش ٹھاکر کو وہاں اپستھت مہیلائیں چپل سے پیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مہیش ٹھاکر کہتے ہیں کہ علاقے کے دبنگوں نے انہیں گاؤں سے بے دخل کرنے کی بھی دھمکی دی ہے اور وہ بھیبھیت ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کا ویڈیو بنایا گیا اور اسے وائرل کیا گیا. وہیں ڈی ایم تیاگ راجن نے بتایا کہ معاملے کو گمبھیرتا سے لیا گیا ہے اور دوشیوں کے خلاف کٹور کاروائی کی جائے گی. ابھیمنیو کمار سہا, بی بی سی دلی.
اور اب وقت ہے دلی سے چھپنے والے اخباروں کی سرخیوں کا. سندیپ رائے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ پرمکھ اخباروں کے ساتھ موجود ہیں. سندیپ, کیا کچھ خاص ہے آج کے اخباروں میں؟
जी कुलदीप, आज के लगभग सभी अखबारों में नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा और दीपावली के बाद प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने की खबर को सुर्खी बनाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि जल्द ही डिस्कवरी चैनल की तर्ज पर एक देसी चैनल डीडी प्रकृति लॉन्च होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर इस चैनल को शुरू करने का एक प्रस्ताव दिया है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के तहत इस चैनल को 2018 में यानी अगले साल शुरू किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के अनुसार बैंकों के संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA ने आधार के बारे में बैंकों को निर्देश देने के यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है। अखबार ने कहा है कि IBA ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RBI वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत केवल केंद्रीय बैंक ही बैंकों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने जजों और नौकरशाहों को जाँच से बचाने के लिए एक विधेयक पास किया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2017 को 7 सितंबर को पेश किया था। इसके तहत अधिकारियों पर आरोपों की खबर को छापने से मीडिया को भी रोका गया है। विधेयक के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट जजों और नौकरशाहों के खिलाफ न तो जांच का आदेश दे सकता है और न ही इनकी जांच कराई जा सकती है। द टेलीग्राफ की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताजमहल पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। NCP प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि शाखाओं में RSS लोगों को गलत जानकारियां देता है और यही लोग बाद में BJP में शामिल होते हैं और उन्हें संवैधानिक पद दिए जाते हैं। अगर ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है तो प्रधानमंत्री को खुले तौर पर ये कहना चाहिए कि ये सही है। स्टेट्समैन की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे। इस महीने उनकी यह तीसरी गुजरात यात्रा होगी। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की है। द हिंदू की एक खबर के अनुसार ताज़ा रिलीज हुई तमिल फिल्म मरसाल में GST के जिक्र पर छिड़े हंगामे के बीच फिल्म के बचाव में मशहूर एक्टर कमल हसन भी आ गए हैं। इस फिल्म में GST का जिक्र है जिस पर BJP ने आपत्ति दर्ज कराई है और उस हिस्से को फिल्म से हटाने की मांग की है। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार नवंबर से 500 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी जिससे यात्रा के समय में 15 मिनट से लेकर 2 घंटे समय की बचत होगी।
बहुत शुक्रिया संदीप राय। एक जनसत्ता अखबार मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ और चूंकि दीपावली की छुट्टी के एक दिन के बाद कल अखबार दिल्ली में नहीं छपे थे और आज छपे हैं तो खुले में बिके नहीं पर खुलेआम छूटे पटाखे, ये जनसत्ता ने शीर्षक दिया है। और उसके साथ ही में एक और खबर दी है कि भारत में 2015 में प्रदूषण से 25 लाख लोगों की मौत हुई है। ये हमने भी आपको अपने कार्यक्रम में ये खबर बताई थी। बहुत शुक्रिया संदीप राय अखबारों की समीक्षा के लिए।
BBC इंडिया बोल।
अयोध्या पर क्यों खास ध्यान दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार? दिवाली के मौके पर दीपदान का भव्य कार्यक्रम और इससे पहले राम की 100 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने का ऐलान। सरकार का दावा, पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद, लेकिन विरोधी इसमें देख रहे हैं राजनीति। आप क्या सोचते हैं? रखिए अपनी राय BBC इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 21 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
55 साल पहले यानी साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत की बुरी तरह हार हुई थी। भारत की सैन्य विफलता ने देश के मनोबल को झकझोर कर रख दिया था और भारत की राजनीति से जवाहरलाल नेहरू के वर्चस्व की समाप्ति की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इस युद्ध में भारत की विफलता के क्या कारण थे और इसके दूरगामी नतीजे क्या हुए, बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
आज कल की खबरें आई थीं, वहाँ पूर्वी सीमा प्रांत में वालोंग एक जगह है, उसको हमारी फौज को छोड़ना पड़ा। सीला एक पास है, पहाड़ है बोंडीला के ऊपर, तवांग और बोंडीला के बीच में, और बोंडीला भी हमारे हाथ से निकल गया। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ कि हमारी फौज को हटना पड़ा वहाँ से, लेकिन रंज होने से और भी हमारा इरादा पक्का हुआ।
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण 20 नवंबर 1962 को दिया था। तब तक नेफा के अधिकतर मोर्चे पर भारत की हार हो चुकी थी और चीनी सैनिक तेजपुर के नजदीक तक पहुंच आए थे। वहां के उपायुक्त वहां से भाग चुके थे और ये डर था कि तेजपुर पर कब्जे के बाद चीनी असम के मैदानी इलाकों में उतर आएंगे। शुक्र ये रहा कि इस भाषण के कुछ घंटों के भीतर ही चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और वापस अपने क्षेत्र में चले गए। लगभग एक महीने तक चले इस युद्ध में भारत के 1383 सैनिक मारे गए, 1047 घायल हुए और 1696 सैनिक लापता हुए और 3968 सैनिकों को चीन ने युद्धबंदी बनाया। चीन ने इस युद्ध में 722 सैनिक खोए और उनके 1697 सैनिक घायल हुए। युद्ध की नींव एक तरह से 1950 में ही रख दी गई थी जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण किया था। चीन ने कभी भी मैकमोहन लाइन को दोनों देशों के बीच सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। दोनों देशों के संबंधों को उस समय बहुत बड़ा धक्का लगा जब 1959 में तिब्बत के दलाई लामा भागकर भारत आए और भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। मैंने जाने माने राजनीतिक विश्लेषक इंदर मल्होत्रा से पूछा कि अगर भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण नहीं दी होती तो क्या भारत चीन युद्ध नहीं हुआ होता?
दलाई लामा अगर वहां से आ रहे हैं तो उनको नहीं मना किया जा सकता। ये देश जो है ये गौतम बुद्ध का देश है, उसको हमने निकाल दिया हो यहाँ से, वो दूसरी बात है। तो दलाई लामा का आना जाना लाजमी था। नेहरू को मालूम था कि ये उनको बहुत परेशान करेगा, लेकिन नेहरू को जो ये नहीं मालूम था वो ये कि माओ से तुंग ने ये तय कर लिया था कि वह हिंदुस्तान को और जवाहरलाल नेहरू को एक सबक सिखाना है।
इस युद्ध में मुकाबला दो असमान सेनाओं में था। भारत की ओर से 10 से 12 हजार सैनिक लड़ रहे थे तो चीन ने उनके मुकाबले 80 हजार सैनिक उतारे हुए थे। चीनी ऊंचाई पर थे और पहाड़ पर लड़ने का उनका अनुभव भारत से कहीं बेहतर था। इस युद्ध में भाग लेने वाले ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह कहते हैं,
पहले तो पोजीशन गलत थी, दूसरे हमारे पास कोई प्रॉपर हथियार नहीं थे, मतलब कि आर्टली सपोर्ट नहीं था। दो गन थी जो कि आउट ऑफ रेंज थी, उनके पास 80 बम थे, तो हमारे पास जो थे स्नो क्लोथिंग नहीं था, हमारे पास माइंस नहीं थी, हमारे पास डिगिंग इक्विपमेंट नहीं था, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय राइफल और 50 राउंड। और हमारी जो पोजीशन थी वो वैली में थी, चाइनीज जो थे ऊपर थे, दे हैड अ रोड राइट अप टू दिस रिज ऑन विच दे वर डिप्लॉयड and our everything was man porter, it was coming on the kamar pe porter leke aate the. Do din ka rasta tha jahan hamara saman pada tha, to khana jo hum bulate the khud hi kha lete the wo log.
Nifa mein tainat 7th brigade ko uske haal par hi chhod diya gaya tha. Chini na sirf behtar sainik taiyari ke sath aaye the balki sankhya mein bhi bhartiyon par kahin bhari the. सेकेंड लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह बहल को उन्होंने कड़ी लड़ाई के बाद बंदी बनाया था। हथियार डालने के बाद चीनियों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया।
देखिए, हार्श तो उन्होंने हमारी तरफ होना ही था क्योंकि हमने ऊपर उनके ऊपर डायरेक्ट आर्टिलरी फायर किया था। और इस वक्त जो एंड में जब हम लोगों का उन्होंने सरेंडर करवाया, उस वक्त तो बहुत ही फियर्स बैटल हो रहा था। हम भी फायर कर रहे थे, वो भी फायर कर रहे थे, चिल्ला भी रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और जब उन्होंने बट मार के मेरे से पिस्टल छीन लिया और मेरे जवानों को भी ओवररन कर दिया, ऊपर आके चढ़ गए, तो उस वक्त तो सिचुएशन यही होती है कि प्राउड पैराट्रूपर बिकम्स ए प्रिजनर ऑफ वॉर एंड फील्स लाइक नोबडी ऑन अर्थ।
इस हार के पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे? शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, शीर्ष सैनिक नेतृत्व, या फिर युद्ध के मोर्चे पर लड़ने वाले कमांडर या सैनिक? राजनीतिक विश्लेषक इंदर मल्होत्रा इस हार का ठीकरा जवाहरलाल नेहरू के सिर पर फोड़ते हैं।
His, no matter who advises him, what parliament says, to Krishnamenon, he was there till well after the 20th of October. On 31st October, he was made only Minister of Defence Production with Garadin. वो थे वहाँ, और जब तक वो थे तो उनकी और कॉल को कोई कुछ कह नहीं सकता था। कॉल थे अब बी एन मलिक, बिकॉज हर फैसले में मलिक का हाथ है। और किसी दुनिया में, देश में, انٹیلیجنس چیف کا رول ہے ٹو پرووائڈ دی انٹیلیجنس بٹ ناٹ ٹو میک پالیسی. لیکن یہ ایم جے دیسائی جو امبیسڈر گالبرتھ سے بھی بات کر رہے تھے اور پنڈت جی کے ایڈوائزر تھے, وہ ڈیفینس سیکرٹری انڈو سے ہریش سرین ہے ڈیبری سے. تھاپرز رول واز ناٹ ون آف کمیشن بٹ آف اومیشن. پلت ان کو کہتے رہے کہ بھائی بھگوان کے واسطے تم اس کو اوور رول کرو, تو بٹ ایٹ لیسٹ اے مین آف آنر ہی ریزائنڈ.
یدھ میں بھاگ لینے والے جنرل کے کے تیواری بھی اس کے لیے نیتاؤں اور سینا کے اعلی افسروں کو ذمہ دار مانتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں اس ہار کا ویلن کسے ٹھہرایا جانا چاہیے.
ہندوستانی ایٹیٹیوڈ نیتوں کی, نیتاز کی, پنڈت نہرو از دا بگیسٹ ون ٹو بلیم. ان کا آئیڈیل تھا ہندی چینی بھائی بھائی, ان کا ایڈوائزر تھا کرشنا مینن ڈیفینس منسٹر, اور ایک دو انڈین آفیسرز کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا. جنرل تھاپر تھا آرمی چیف اور جنرل کو تھا چیف آف دا جنرل اسٹاف. ان کو انکریج کر رہے تھے اور ہمیں حکم تھا چائنیز وونٹ اٹیک, جاؤ ٹیک اوور, برتھ رائٹ اپنے آکوپائی کر لو اپنا. دے آر ناٹ ایون فلی آرم, دے ہیو اولڈ ویپنز اینڈ سو آن, اونلی ون اینڈ تھری پیپل از آرمڈ, تھنگ لائک. یہ ایسی رپورٹ ہمارے پاس آتی تھی جب ہم ادھر تھے 61-62 میں.
اس ہار سے نہرو کبھی اوبر نہیں پائے. پردھان منتری پد پر وہ بنے ضرور رہے لیکن چین کا وشواس گھات انہیں انت تک سالتا رہا اور مئی 1964 میں ان کا دیہاوسان ہو گیا. اندر ملہوترا کہتے ہیں,
کوئی لیڈر کسی بھی دیش میں جتنی بے عزتی ہوئی اس دیش کی اس کو سروائیو نہیں کر سکتا تھا. یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ ان کے جانے کا یا نکالے جانے کا. اور اگر آپ دیکھیں ان کا 63 میں ہی کنٹینیوڈ ٹو بی دی اسٹل ریسپیکٹڈ لیڈر. اینڈ ہاں, اسٹیچر وہ نہیں تھا, انٹرنیشنل اسٹیچر خراب ہو گیا تھا, تو ہی واز ناٹ دا سیم مین اینڈ ہی ڈنٹ سروائیو دا وار. ایز اے میٹر آف فیکٹ,
اس ہار نے نہرو کا راجنیتک قد تو کم کیا ہی, بھارت کے منوبل کو بھی اس نے گہری چوٹ پہنچائی. 27 جون 1963 کو لتا منگیشکر نے جواہر لال نہرو کی اپستھتی میں پردیپ کا لکھا وہ مشہور گانا گایا جو چین سے بھارت کی ہار کے بعد بھارت واسیوں کی منودشا کو چترت کرتا تھا. نہرو کی آنکھوں میں آنسو لا دیے, لیکن آنسوؤں بھر سے تو رڑنیتک ناکامی, اپریاپت سینک تیاری اور واستوکتا سے دور رہنے کی کمی کو تو چھپایا نہیں جا سکتا. ریحان فضل, بی بی سی دلی.
آج کی ویوچنا آپ کو کیسی لگی ہمیں لکھیے گا ضرور. چلتے چلتے آپ کو کھیل کی ایک خبر بتا دیں, ڈھاکہ میں چل رہے ایشیائی ہاکی کپ 2017 کے سپر چار مقابلے میں آج بھارتی ٹیم پاکستان سے بھیڑے گی اور فائنل میں جگہ بنانے کی کوشش کرے گی. اسی ایشیا کپ کے پہلے راؤنڈ میں بھارت پاکستان کو 3-1 سے ہرا چکا ہے. کارکرم کی سماپتی سے پہلے ایک بار پھر سندیپ رائے سے سنیے وشو سماچار.
بی بی سی سماچار. افغانستان میں جمعے کی نماز کے دوران ہوئے 2 آتم گھاتی حملوں میں کم سے کم 60 لوگ مارے گئے ہیں. عراقی فوجوں اور کرد سرکشا بلوں کے بیچ جھڑپ کی خبروں کے بیچ امریکہ نے عراقی فوجوں کو دیش کے اتری علاقے میں تعیناتی کم کرنے کی اپیل کی ہے. مصر کے پشمی ریگستانی علاقے میں اسلامی چرمپنتھیوں سے ہوئی مٹ بھیڑ میں سرکاری سرکشا بل کے 53 جوان اور 15 چرمپنتھی مارے گئے ہیں. پولینڈ میں ایک ویکتی نے دیش کے دکشنی شہر استالووا وولا کے ایک بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں چاقو سے حملہ کر ایک ویکتی کی ہتیا کر دی جبکہ کئی لوگوں کو گھائل کر دیا. فورنسک جانچ میں پتا چلا ہے کہ چلی کے نوبل پرسکار وجیتا وامپنتھی کوی پابلو نیرودا کی موت زہر دینے سے ہوئی تھی. بی بی سی سماچار.
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को समस्त साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।